ನಿತೈ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಶ್ರೀ ಪಾಜಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೀ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ಘರ್ ಪೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಉಮ್ಮೀದ್ ಹೈ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ನೇ ಸಬ್ ದರ್ಶನ ಅಂದರ್ ಕೆ ಕಿಯೆ ಹೋಂಗೆ ಇಮ್ಲಿ ಕಾ ಪೇಡ್ ದಹಿ ಕಾ ಪಾತ್ರ ದೂಧ ಕಾ ಪಾತ್ರ ಚರಣೋ ಕೆ ಚಿನ್ನ ಔರ್ ಜೊ ಬೀಚ್ ಮೇ ತೀರ್ಥ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ ಮಧ್ವ ಸರೋವರ ಯಾ ವಾಸುದೇವ್ ತೀರ್ಥ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ಉನ್ಹೋನೇ ಅಪ್ನಿ ಮಾತಾ ಕೋ ವರದಾನ್ ದಿಯಾ ಥಾ ಕಿ ಆಪ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸ್ನಾನ್ ಕರೋಗೆ ಆಪ್ಕೋ ಚಾರೋ ಕುಂಡೋ ಕೋ ಸ್ನಾನ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಲಾಭ ಮಿಲೇಗಾ तो सब लोग ने वहां पर आचमन किया। हरे कृष्णा। आपके लिए हम धनुष कुंड और बाण कुंड का तीर्थ लाए हैं, क्योंकि जब हम गए वहां पर अंधेरा हो चुका था और वहां जाने में और आने में कम से कम एक घंटा लगने की संभावना थी। पहाड़ पे चढ़ने का था और समय की पाबंदी थी, इसलिए हमने वो आपको वहां पर नहीं लेके गए। वहाँ का जल लाए हैं और आप लोगों के शीश पर प्रसाद के समय प्रत्यक्ष रूप में उसको छिड़काया जाएगा। हरे कृष्ण। इसे कहते हैं फ्लावर गार्लैंड रिसाइकलिंग। हरे कृष्णा। पर्याप्त उपयोग सभी मालाओं का। तो मध्वाचार्य जी के घर पर आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। संतों के चरण जहाँ लगते हैं वहाँ पर पहुँचना भगवान की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं होता है। और हो सकता है कि अगर हमारे पास पूर्व जन्म के इस जन्म के बहुत सारे पुण्य होंगे तो हम ऐसी जगह पर आ सकते हैं। तो वायुदेव के तीन अवतार हुए, एक हनुमान जी, एक भीमसेन जी और तीसरे मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य के घर पर अभी विराजमान है, नारायण भट्ट और वेदवती के घर में हम लोग बैठे हैं। इतने अद्भुत माता पिता, उतना अद्भुत पुत्र था उनका। तो उनकी कथा आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने पहले बताया कि आपको वो 30-30 मिनट में रोज घर पे जाया करते थे, तो उनके गुरुजी ने उनको पूछा कि कैसे पढ़ोगे आप। तो उन्होंने पद क्रम ताल और सुर के साथ में उनको सभी श्लोक उच्चारण करके सुनाए। तो उस समय उनके गुरुजी ने उनका नाम रखा आनंद तीर्थ। और उसी जो उनके अध्यापक थे गुरुजी, उनके बेटे के एक दिन बहुत सरदर्द हुआ तो बहुत परेशान हो गए, गुरुजी भी परेशान हो गए, बालक भी बहुत परेशान था। तो ये आनंद तीर्थ वासुदेव वहाँ पर गए, उन्होंने उस बालक के कान में फूंक लगाई और कान में फूंक लगाते ही सारा सरदर्द मिट गया उसका। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, जैसे ही कान में फूंक लगाई और सरदर्द मिट गया, उस बालक को अपने सारे पूर्व जन्मों का दर्शन हुआ, दृष्टांत हुआ, सच चमत्कार उन्होंने किया। तो उसके बाद में ऐसे कहा गया कि उनका सभी शास्त्रों पर बहुत जल्द ही उन्होंने प्रभुत्व प्राप्त किया, समझने में, बोलने में, प्रवचन करने में। अनंतेश्वर मंदिर में एक स्थान है, आप लोग गए मंदिर में अनंतेश्वर के, कभी गए नहीं आप लोग में से? यात्रा में गए कोई अनंतेश्वर में? आपको कल शाम को जाना है, कल शाम को हमारी रथ यात्रा होगी ना, तो पहले कथा होगी उसके बाद बीच में समय मिलेगा तो आपको चंद्रमौलेश्वर, अनंतेश्वर और उडुपी कृष्ण के दर्शन करने हैं। बहुत भीड़ होगी उडुपी कृष्ण के लिए, जरूर दर्शन करना है आपको। तो अनंतेश्वर मंदिर के अंदर आप जब ऐसे जाएंगे सामने तो आपको भगवान का दर्शन होगा, फिर जब परिक्रमा में जाएंगे ऐसे घूमकर तो उधर राइट में घूमते ही आपके राइट में एक जगह आएगी ऐसे खिड़की जैसी, वो मध्वाचार्य के बैठने की जगह है। वहाँ पर बैठकर वो प्रवचन किया करते थे रेगुलरली, और उनका सबसे प्रिय विषय था तैत्तिरीय उपनिषद। उस पर उन्होंने बहुत भाष्य लिखे हैं, टीकाएं लिखी हैं, तात्पर्य लिखा है उसके ऊपर, उनका बहुत फेवरेट था वो। तो आश्चर्य की बात यह है कि जब वो उनकी लीला को समाप्त करने का समय आया उनका, तो वहीं पर बैठकर वो ऐतरेय उपनिषद पर भाषण दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, और सबकी आंखों के सामने वहां से अदृश्य हो गए और सीधे बद्रिक आश्रम प्रकट हो गए, और वहीं से वो भगवत धाम चले गए। तो वो जगह भी वहां पर है जहां पर उन्होंने अपने जीवन में पूरे समय पर वहां बैठकर प्रवचन किया, और वहीं से वो अंतर्धान हो गए। वो अनंतेश्वर के मंदिर के अंदर हैं। फिर जब उन्होंने अपने गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण की, तब उनकी उम्र 12 साल की थी, तो उनके मन में जगत के कल्याण के लिए जो ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ था उसको पूर्ण करने के लिए संन्यास लेने की इच्छा निर्माण हुई। उस समय उनके घर में बड़ी बहन थी और ये छोटे भाई थे, दो ही थे, और उन्हें माता पिता के पास जाके संन्यास लेने का निर्णय व्यक्त किया, मंतव्य मतलब विचार व्यक्त किया। तो नेचुरली माता पिता बहुत दुखी हो गए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगा, हमारा बुढ़ापे में कौन सहारा होगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको पुत्र होगा तो आप मुझे संन्यास लेने के लिए अनुमति देंगे। अभी देखिए उनकी वैसे भी उम्र बहुत बड़ी थी जब भी इनका जन्म हुआ था, अभी ये 12 साल के हो गए तो और उम्र बड़ी की नहीं हुई, तो उनको एक ऐसा विनोद लगा, वो परिहास कि बालक हमसे परिहास कर रहा है। लेकिन क्या कहें, उन्होंने हाँ कर दी, जैसे कि वो नामुमकिन था ना, उसमें हाँ करने में क्या तकलीफ है, इसको कैसे भी संन्यास लेने के लिए मना करना है। तो उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ अगर हमें पुत्र होता है तो आप संन्यास ले सकते हो। तुरंत ही कुछ दिनों बाद भगवान की दिव्य इच्छा से, दिव्य तरीके से दोबारा वेदवती गर्भवती हो गई बुढ़ापे में, और यथावकाश पुत्र प्राप्ति हुई, और फिर जैसे वादा किया था वैसे उनको हाँ करना पड़ा। उसके बीच में भी एक घटना हुई, वासुदेव जी है ना, वो तो मगरमच्छ को वगैरह ऐसे पकड़ते थे समुद्र में जाकर, समुद्र में गए, मगरमच्छ को बुलाया और मगरमच्छ के द्वारा ऐसे निगले जाने का नाटक किया उन्होंने, मगरमच्छ उनके नियंत्रण में था पूरा। तो उन्होंने कहा निगलो मुझे आप, और मगरमच्छ निगलने लगा, और माता पिता बचा रहे बचाओ बचाओ वासुदेव को बचाओ, तो ये कह रहे आप संन्यास के लिए हाँ कर दो फिर छोड़ देगा मुझे वो, हाँ 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 कोई बात नहीं संन्यास ले सकते हो, तुरंत मगरमच्छ छोड़ दिया उसको। तो इस तरह से उन्होंने कई तरीके से अपने माता पिता को मनाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास उन्होंने यहाँ के एक गुरुजी हैं, इनका नाम है अच्युत प्रेक्ष जी महाराज, अच्युत प्रेक्ष महाराज, वो भगवान के द्वारा विशेष भेजे गए थे इनको संन्यास देने के लिए। वैसे अच्युत प्रेक्ष उनके गुरु जी के संन्यास गुरु के रूप में प्रकट हुए, लेकिन अच्युत प्रेक्ष को स्वयं मध्वाचार्य के ऊपर मतलब वासुदेव अनंत तीर्थ के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, वो वासुदेव को पूजनीय मानते थे, स्वयं उनके लिए वासुदेव वंदनीय थे, जैसे कृष्ण के लिए कृष्ण के प्रति सांदीपनि मुनि का वही भाव था, सांदीपनि उनको वंदनीय मानते थे, लेकिन वो गुरु के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा गुरु बनने की थी। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो भी उनका जो संन्यास गुरु थे केशव, हाँ क्या नाम था उनका, केशव भारती, तो केशव भारती का भी उनके प्रति वही वंदनीय भाव था, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए वो गुरु बने उनकी, और गुरु बनकर दीक्षा देने की सेवा किया उन्होंने, वही भाव अच्युत प्रेक्षक जी का था। उनको बालक की तरह प्रेम था मध्वाचार्य के ऊपर। तो जब संन्यास लिया तो उनका बीच में और भी एक नाम हो गया, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। जब उन्होंने अपना विद्या पूरा पूर्ण किया, 12 साल का विद्या पूर्ण किया, मतलब ग्रेजुएट हो गए वो गुरुकुल से, तो उनको पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ये नाम प्राप्त हुआ। उसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण प्रज्ञ यानी कि उनका अभी जो प्रज्ञा है ना, वो इंटेलिजेंस जो प्रतिभा है वो ज्ञान से परिपूर्ण हो गई है, पूर्ण पूर्ण प्रज्ञ यानी उनको पूरा अनुभूति के साथ ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए उनका एक नाम पूर्ण प्रज्ञ भी है। पहला नाम वासुदेव था, फिर आनंद तीर्थ हो गया, फिर पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ हो गया, फिर संन्यास के बाद में मध्वाचार्य बने हुए। तो अभी एक बार क्या हुआ, उनको संन्यास देने के बाद में अपने गुरु के पास में मध्वाचार्य ने विनती किया, इच्छा प्रकट की कि मुझे गंगा जी में स्नान करना है। तो गुरु ने कहा ठीक है आप जा सकते हो। लेकिन जब वो प्रत्यक्ष निकलने लगे ना वहाँ से गंगा जी जाने के लिए, और निकल भी गए, तो इनको मध्वाचार्य का बहुत विरह हो गया, टू मच सेपरेशन। तो वो भी आगे बढ़ रहे उत्तर की ओर, गंगा जी की ओर, लेकिन यहाँ पर अच्युत प्रेक्षक जी बहुत व्याकुल हो गए। तो उन्होंने ना जोर जोर से गंगा देवी को पुकारना शुरू किया, गंगा देवी मैं अपने शिष्य से दूर नहीं रह सकता, क्या आप यहीं आकर उनको दर्शन दे सकते हो क्या? ऐसे उन्होंने हृदय से गंगा जी से प्रार्थना करना शुरू किया, एकदम व्याकुल होकर। तो गंगा जी का हृदय पिघल गया, उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि मैं आ रही हूँ, और आपका जो अनंतेश्वर का स्थान है वहीं पर मैं प्रकट हो जाऊंगी। तो ऐसे कहकर उन्होंने संदेश भेजा मध्वाचार्य को, वापस आ जाओ। और जैसे ही मध्वाचार्य वापस आ गए, तो आज जहाँ पर मध्व सरोवर है ना, वहाँ पर ऐसे बहुत वेग से गंगा जी प्रकट हुई और वो कुंड बन गया उधर, मानो धरती के अंदर से प्रवाह निकला ऐसे जोरदार, कि इतनी जोरदार लहरें निकली, सब लोग समुद्र की तरह लहरों का अनुभव कर रहे थे इसमें। आज भी 12 साल में एक बार एक विशिष्ट तिथि को वहाँ पर ऐसे ही तूफान जैसे, क्या कहते हैं उसको, जलाशय में गंगा जी का आगमन होता है और सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं उस दिन उसका दर्शन करने के लिए। गंगा जी का आवेश होता है उस कुंड में, तो बहुत लहरें उठती है, बहुत ऊपर उथल पुथल होती है और कुंड बहुत भर जाता है उस दिन। तो ये मध्वाचार्य और अच्युत प्रेक्षक, इन दोनों के भक्ति और प्रामाणिकता का एक प्रमाण है, और आपके सामने मध्व सर्व के सामने रूप में वो खड़ा है। उसके बाद में अच्युत प्रेक्षक को तो बहुत सारी दीक्षाएं होगी ना, एक तो गुरुकुल में दीक्षा हो गई, फिर संन्यास दीक्षा हो गई, लेकिन उनकी वास्तविक दीक्षा जो है वो व्यासदेव से प्राप्त हुई। तो जब उनको प्रेरणा हुई तो वो यहाँ से चलकर हिमालय में चले गए, उनके कुछ दो शिष्यों को लेकर चले गए वो, तब तक तो वो भी गुरु बन चुके थे, लेकिन वो तो वैसे उनका जो रियल प्रामाणिक दीक्षा थी वो वेदव्यास जी की तरफ से हुई। इसलिए हमारे संप्रदाय में जब हम संप्रदाय को गिनते हैं तो सबसे पहले कृष्ण हैं, उसके बाद में ब्रह्मा जी हैं, उनके मानस पुत्र, उनके स्वयंभू पुत्र, फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि हैं, नारद मुनि के शिष्य व्यासदेव हैं, और व्यासदेव के शिष्य मध्वाचार्य। इस तरह से हमारे संप्रदाय का नाम ब्रह्म मध्व संप्रदाय है। और इसी संप्रदाय में फिर चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हमारे संप्रदाय का नाम। तो इनका संप्रदाय जो है वो भी हमारा संप्रदाय है, ठीक है। हमारा संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु से भी जुड़ा हुआ है, और आज जो संप्रदाय चल रहा है उड़पी में, उड़पी के मठ में, वो मध्वाचार्य से एक ब्रांच निकली हुई है, वो संप्रदाय है। उसके बाद में जो माधवेंद्रपुरी आए, जिनका लक्ष्मी तीर्थ ने उनको दीक्षा दिया था, फिर माधवेंद्रपुरी आए, फिर माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दीक्षा दिया, फिर ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दिया, प्रथम दीक्षा दिया। इसलिए हमारे संप्रदाय जो जिस ब्रांच में हम हैं उसका नाम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। तो वेद व्यास का दर्शन करने के लिए मध्वाचार्य हिमालय चले गए, और हिमालय पे दो सन्यासी लोगों को लेकर गए थे वो। और आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हिमालय में आज भी आप जहाँ जाते हैं, हम लोग जहाँ पहुँच सकते हैं, उसको बद्रिकाश्रम कहते हैं, लेकिन असली बद्रिकाश्रम जो है वहाँ मनुष्य पहुँच नहीं सकता है। तो एक सीमा तक वो अपने शिष्यों को लेकर गए, बाद में अपने शिष्यों को वहीं रोका, और फिर वेदव्यास जी नीचे आए अपने मूल बद्रिकाश्रम से, और उनका वहाँ संवाद हुआ, फिर हाथ पकड़कर उनको वेदव्यास जी अपने मूल बद्रिकाश्रम में लेके गए, जहाँ कोई मानव, सामान्य मानव पहुँच नहीं सकता है। फिर वहाँ जाकर उन्होंने उनको महाभारत के ऊपर टीका करने का आदेश दिया, मतलब किताब लिखने के लिए। तो कारण यह था कि भीम के रूप में उन्होंने साक्षात महाभारत के लीलाओं का दर्शन स्वयं किया था, इसलिए महाभारत तात्पर्य निर्णय ये ग्रंथ जो है उसको लिखने का आदेश वहाँ प्राप्त हुआ। और भगवान भगवद गीता के ऊपर भी उन्होंने तात्पर्य लिखने का आदेश वहाँ प्राप्त किया, और वेदांत सूत्र पर भी उन्होंने वहाँ पर भाष्य लिखने का आदेश प्राप्त किया, और वो वापस आए। इस तरह से हाँ, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, वेदांत सूत्र और महाभारत, इन तीन के ऊपर उन्होंने तात्पर्य लिखने का आदेश वहाँ प्राप्त किया। और एक बार भी वो मिलने गए थे, और तीसरी बार फिर आखिरी बार वहाँ गए और वहाँ से अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। ऐसे मध्वाचार्य के बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, उसको एक प्रवचन में पूर्ण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी शक्ति की बहुत कहानियाँ हैं। जब सन्यासी बने तो उन्हें भारत भर प्रवास किया, उसमें कई गुंडों का सामना करना पड़ा उनका, तो वो एक एक हाथ से पाँच पाँच दस दस लोगों को मारा करते थे। जहाँ जहाँ ऐसे बेफजूल का बल का वो दर्शन नहीं कराते थे किसको प्रदर्शन, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी भक्तों की रक्षा करने की, तो उन्होंने कहते कि एक हाथ से एक बार 10 गुंडों को मार दिया, अपने अंगूठे से मणिमंत को कुचल दिया। और उनकी भूख के भी बहुत सारे कथाएं आती है। एक बार उनको ऐसा चैलेंज दिया गया कि आप खाओ, खा के दिखाओ, तो 10 इंच का चौड़ा केला, इज इट दिस मच, ये 10 इंच का जगह है, इतना बड़ा केला, ऐसे 200 केले उन्होंने खाए और सब लोग दंग रह गए उनको देखकर। ऐसे अद्भुत शक्ति थी उनके अंदर। तो हमारे लिए जरूरी यह है कि उन्होंने शंकराचार्य के पश्चात विशिष्ट द्वैत ये सिद्धांत जो है वो प्रकट किया, और हमारे लिए जीव और भगवान कैसे अलग हैं, जीव अणुमात्र हैं और भगवान विभू हैं, अनंत हैं, ये सिद्धांत उन्होंने स्थापन किया। और यही कहा कि भक्ति करने के लिए दो की आवश्यकता होती है, जब दो होते हैं तो प्रेम और भक्ति हो सकती है, एक जब होता है तो एक के ऊपर प्रेम और भक्ति नहीं हो सकती है, दो होने चाहिए। प्रेम और भक्ति का रिश्ता होने के लिए दो व्यक्ति का होना आवश्यक है, और वो दो व्यक्ति है हम और भगवान। और भगवान हमारा जो चिरंतन संबंध है उसके बारे में मध्वाचार्य ने सिद्धांत स्थापन किया। फिर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिद्धांत बताया, शंकराचार्य ने बताया कि हम और भगवान एक है, मध्वाचार्य ने बताया हम और भगवान अलग है, तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को जोड़ दिया। और उनके द्वारा कहे गए सिद्धांत का नाम है अचिंत्य, यानी समझने के लिए मुश्किल, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, एक साथ में हम भगवान से एक भी हैं और अलग भी हैं, ये दोनों मिलाकर उन्होंने सिद्धांत प्रकट किया और भक्ति मार्ग और प्रेम भक्ति मार्ग का प्रचार किया। तो इसका मतलब यह है कि हम एक ही साथ भगवान के सभी गुणों को अपने आप अंदर अनुभव करते हैं, भगवान के अंदर जितने गुण हैं वो सारे हमारे अंदर भी हैं, तो गुण रूप में क्वालिटी में हम भगवान से एक हैं, लेकिन भगवान में वो गुण अनंत मात्रा में हैं, हमारे में वो गुण अणु मात्रा में हैं। जैसे हम भी सुंदर हैं लेकिन भगवान का सौंदर्य हमारे सामने अनंत है, हम लोग थोड़े से सौंदर्य को अनुभव करते हैं। हमारे अंदर भी बुद्धि है लेकिन अणु मात्र है, भगवान के अंदर असीम बुद्धि है। हमारे अंदर भी बल है लेकिन भगवान के अंदर असीम बल है। इस तरह से हम अगर विचार करते जाएंगे तो हमारे अंदर भी नम्रता है लेकिन भगवान अनंत नम्र हैं, भगवान अनंत शक्तिशाली है, हम भी शक्तिशाली है लेकिन अणु मात्र हैं। और ये भी बात सिखाई उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कि हमारे अंदर जितने भी गुण हैं वो सारे गुण भगवान की ओर से ही आते हैं, और भगवान की वजह से ही वो सारे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के अंदर भगवान के 50 गुण उपलब्ध हैं, 50 गुण ब्रह्मा के अंदर पूरी मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर 55 गुण शिव जी में उपलब्ध हैं प्रचुर मात्रा में, पूर्ण मात्रा में, 60 गुण भगवान के विष्णु अवतार में उपलब्ध हैं परिपूर्ण मात्रा में, लेकिन आखिरी 4 गुण जो हैं 64 में से वो केवल कृष्ण भगवान में हैं, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। ये 4 जो गुण हैं वो सबके अंदर होते हैं लेकिन वो प्रचुर अनंत मात्रा में केवल भगवान कृष्ण में होते हैं। और जो 50 गुण ब्रह्मा जी में पूर्ण मात्रा में उपलब्ध हैं वो अणु मात्रा में हमारे अंदर उपलब्ध होता है। और लेकिन इस दुनिया में आने के बाद में दुर्गुण और दुष्प्रवृत्ति, इनकी वजह से ये 50 गुण भी अणु मात्रा में होने पर भी ढके रहते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जब भगवान का नाम का हम जप करते हैं तो जो दुष्प्रवृत्ति और दुर्गुण है उसका आवरण धीरे धीरे हटने लगता है, और अंदर जो छुपे हुए अणुमात्र गुण हैं वो प्रकट होने लगते हैं, उदाहरणार्थ जैसे हम कोयले को नली से फूंक मारते ना, हवा देते, तो क्या होता है, कोयले के अंदर पहले से निखारा होता है, अग्नि होती है, लेकिन वो राख से ढकी होती है। जब हम नली से हवा देते हैं तो क्या होता है, राख निकल जाती है और क्या प्रकट होता है, जो अंदर छुपा हुआ अग्नि है वो प्रकट हो जाता है। तो उसके ऊपर एक श्लोक भी है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। इसका मतलब हमें बाहर से कुछ इम्पोर्ट नहीं करना है, अंदर हमारे अंदर ही भगवान की भक्ति छुपी हुई है, केवल साधना करके उसको जागृत करना है और जो ढकने वाली चीजें हैं उसको निकाल के फेंक देना है। स्नान करने के बाद क्या होता है, हमारा सौंदर्य खिलता है, सौंदर्य होता है लेकिन गंदगी आने से वो सौंदर्य ढक जाता है। जब स्नान करते हैं तो गंदगी निकल जाती है और सौंदर्य जो अंदर का है वो निखर आता है बाहर। उसी प्रकार से आत्मा चिरंतन भगवान की भक्त है, नित्य रूप में भगवान की भक्त है, लेकिन हम जब भौतिक दुनिया में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, फिर काम क्रोध मद मोह मत्सर का अनुभव करते हैं, इसलिए आत्मा सामान्य दिखाई दिखने लगती है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो आत्मा के दिव्य गुण जो भगवान के गुण हैं वो प्रकट होने लगते हैं। जब भगवान का उसमें हृदय में अनुभूति होती है तो भगवान जैसे ही जीव तेजस्वी दिखने लगता है, उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। भगवान जैसा ही प्रभाव कभी कभी भक्त दिखाते हैं, क्योंकि भगवान के गुण वो भगवान को अनुभूति करके प्रकट करने लगते हैं। और ये प्रवृत्ति और शक्ति हम सबके अंदर है, भगवान के सारे गुण हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं, लेकिन तब प्रकट होंगे जब हम उनके संबंध में अपने आप को जोड़ देंगे। और उनके संबंध में अपने आप को जोड़ देने का कौन सा मार्ग है, एक ही मार्ग है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है और मध्वाचार्य से ये बात जो है उन्होंने स्वीकार की है कि हम और भगवान अलग हैं। शंकराचार्य से ये बात स्वीकार किया है, भगवान से एक हैं, और दोनों को मिलकर ये सिद्धांत प्रकट किया है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आया तो आपको और कोई सिद्धांत पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन सिद्धांत समझ में आया का मतलब क्या है, ये पालन करने का सिद्धांत है, केवल सुनने का सिद्धांत नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, प्रभु जी ने बताया, इतना आनंद आया, सब समझ में आया पूरा लेकिन जो सुना है समझा है, जब तक उसको अमल नहीं करते हैं, जीवन में नहीं उतारते हैं, उस समझे समझने वाले संबंध को प्रकट करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तब तक वो ज्ञान जो है ना वो बोझ बन के रह जाता है। जो ज्ञान आचरण में नहीं लाते हैं वो ज्ञान अपने आत्मा के लिए एक बोझ बनकर माया में हमको डुबा देता है। इसलिए ज्ञान वही ज्ञान है जो उसको विज्ञान के रूप में रूपांतर करते हैं, अमल में उतारने का ज्ञान जो उसको विज्ञान कहते हैं। आपने सुन लिया और उसको विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ उतार दिया तो वो विज्ञान बन जाता है, अनुभूतिपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि जो भी हम सुन रहे हैं उसको जीवन में उतारना है, हाँ नहीं तो ये पिकनिक हो जाएगी हमारी, आए कुछ देखा कुछ सुना यहीं छोड़ दिया और घर चले गए वापस टीवी देखने लगे, उसका कुछ लाभ नहीं है। यात्रा का परिणाम हृदय परिवर्तन के रूप में दिखना चाहिए। आप जितने भगवान के पास थे उससे अधिक पास आपको पहुंचने का अनुभव होना चाहिए, और जितना भगवान के प्रति आपकी आसक्ति थी उससे अधिक आसक्ति आपको हो रही है ऐसा आपको अनुभव होना चाहिए। जितनी पहले माया में आपको रुचि थी उतनी कम रुचि होनी चाहिए जितनी पहले थी, और जितनी भगवान में आसक्ति थी उससे अधिक आसक्ति हमको यात्रा के बाद में अनुभव करने को होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि आपकी यात्रा सफल है। माया में जितनी आसक्ति थी उससे कम, कृष्ण में जितनी आसक्ति थी उससे ज़्यादा जब आपको अनुभव होगा इस यात्रा के बाद में, तो आपके लिए यात्रा सफल हो गई। इसके लिए दृढ़ निश्चय और श्रद्धा होने की आवश्यकता है। श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो भगवान हमको अनुभूति देंगे, अनुभव देंगे, और वो अनुभव के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हो। भगवान ने इतनी कृपा की है, मध्वाचार्य के स्थान पर आपको लेके आए हैं। तो अभी हम आपको एक कहानी बताएंगे 10 मिनट में, वो ये है कि मध्वाचार्य 1239 इस साल में प्रकट हुए, उसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, वो कितने साल जिए कितने साल नहीं जिए, लेकिन उनके पश्चात उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने कृष्ण को प्रकट किया मल पे बीच पे और स्थापन किया, और अपने जीवन काल में उस भगवान की सेवा किया उन्होंने, लेकिन आगे जाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने 8 प्रमुख शिष्यों को ये सेवा सौंप दी। उस उन 8 शिष्यों के 8 मठ हैं, उनके भी नाम याद दिए गए हैं। वो है कनियूर मठ, सौदे मठ, पुत्तिगे मठ, अदमार मठ, पेजावर मठ, पलिमार मठ, कृष्णपुर मठ और शिरूर मठ। ऐसे 8 शिष्यों को उन्होंने ये 8 मठ प्रदान किए, और 8 शिष्यों को भगवान के 8 विग्रह दिए। ये तो प्रमुख विग्रह है कृष्ण का, उडुपी कृष्ण का, लेकिन उसके अलावा अपने अपने मठ में पूजन करने के लिए उन्होंने हरेक भक्त को, हर एक शिष्य को एक एक विग्रह दिए। जैसे किसी को उन्होंने भूवराह मूर्ति दिया, किसी को प्रभु रामचंद्र का मूर्ति दिया, किसी को विठ्ठल का मूर्ति दिया, और वो जब उन्होंने मूर्ति प्रदान किया वो उनके उनके मठ में वो प्रमुख भगवान के रूप में उनका पूजन करते हैं। और भगवान की सेवा उडुपी कृष्ण की उन्होंने 8 मंदिरों में समान बांट दी। जब वो थे तभी उन्होंने 2-2 महीने की सेवा बांट दी थी उनको, तो 16 महीने के बाद में वो चक्र दोबारा घूमता था, और उसको कहते हैं पर्याया। पर्याया मतलब जब किसी मठ का 2 महीने का सेवा है तो उनका पर्याय चल रहा है, ऐसे बोलते हैं, और उस मठ को पर्याय मठ बोलते हैं, और उस गुरु को पर्याय गुरु कहते हैं जिनका अभी सेवा चल रहा है, और 2 महीने के बाद में फिर वो चेंज होता है, उसमें भगवान के श्रृंगार का और भगवान के गर्भगृह का चाबी जो है उसको सुपुर्द करते हैं। और साथ साथ में ना उधर मंदिर में एक अक्षय पात्र है जो मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों को मंदिर में सौंप दिया था, जिसके आधार पर मध्वाचार्य के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और अन्नदान चलता रहेगा। ये आशीर्वाद के रूप में उन्होंने वो थाली प्रकट की थी, जैसे द्रौपदी को प्राप्त हुई थी ना अक्षय पात्र, वैसे अक्षय पात्र मध्वाचार्य के मंदिर में है। तो वो जब पर्याय बदली होता है तो वो अक्षय पात्र और गर्भगृह की चाबी वो अगले गुरु को सौंप देते हैं। तो मध्वाचार्य के जीवन भर तक ये 2-2 महीने का काल चलता रहा उन्हीं के होते हुए, और आगे भी चलता रहा, लेकिन उसके बाद में चलो वो गुरु जी का वर्णन करने के पहले आपको मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आप लोग जब उडुपी कृष्ण मंदिर में चले जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो उधर बहुत कुछ देखने लायक चीज़ें हैं, केवल भगवान का मंदिर नहीं है। एक तो वहाँ पर एक ऐसी कहानी है कि एक कनकदास नाम के भक्त थे, वो शूद्र जाति के थे। तो एक बार मंदिर में आने का प्रयास किया उन्होंने, तो उनको ब्राह्मण लोगों ने सब रोक लिया कि आप मंदिर में नहीं आ सकते। तो इतने प्रामाणिक, इतने शुद्ध भक्त थे कि वो मंदिर के बाहर बैठकर रो रो कर गीत गाने लगे भगवान को पुकारते हुए। इतना रोए कि भगवान का भी हृदय पिघल गया। तो जब दोपहर को भगवान को भोग लगाने का समय हुआ ना, तो भगवान का मंदिर भोग लगकर बंद किया गया, और वो एक खिड़की की ओर थे, वो खिड़की के मंदिर के बाहर से खिड़की से भगवान को देख रहे थे, और भगवान 90 अंश के कोने में उधर देख रहे थे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और भगवान उस दिशा में देख रहे हैं, और मैं यहाँ से गीत गा रहा हूँ रोते रोते, और भगवान का मुँह उस तरफ है। जब भोग की थाली रखी और मंदिर बंद करके सब चले गए, और जब भोग की थाली निकालने को वापस आए ना, तो भगवान कनकदास की ओर घूम चुके थे 90 अंश में। अगर मैं कनकदास हूँ तो मेरी ओर जैसा कैमरा है वैसे वो भगवान घूम चुके थे। जहाँ पर खिड़की थी उसको नवग्रह किंडी कहते हैं, उसमें 9 जगह है, हाँ, सोने का उसमें क्या कहते हैं उस कास्टिंग किया गया है, गोल्ड लीफ। उस खिड़की से मंदिर की मेन खिड़की जो है जहाँ मंदिर समाप्त होता है, उस खिड़की के बाहर कनकदास खड़े थे। तो 2 खिड़कियों के पार भगवान ने उसको मुंह घुमाकर दर्शन दिया। तो उस बाहर की खिड़कियों के कहते हैं कनक एन किंडी, यानी कनकदास की खिंडी यानी खिड़की। उसके बाहर उसकी मूर्ति है, उसको जरूर देखना आप। वहाँ पर वो वीणा लेके खड़े हैं, वो खड़े होकर रो रो के भगवान को पुकार रहे हैं, और वहीं से भगवान के दर्शन होते हैं। और आज जो भगवान का पूर्ण दर्शन था पहले, वहाँ पर प्रवेश द्वार हो गया है और भगवान खिड़की में खड़े देखकर खड़े हो गए, और हम सब लोग उनको खिड़की से देखते हैं। उनका मूल स्थान दर्शन का उस तरफ था पहले, जहाँ पर अंदर प्रवेश करने की जगह थी, सीढ़ियाँ हैं, अंदर जा सकते हैं आप, लेकिन भक्त के लिए भगवान ने अपनी दिशा बदल ली। तो वो एक जगह देखना है आपको। उधर मंदिर में आप अंदर जाएंगे तो भगवान सामने हैं, और ऐसे खड़े होकर भगवान को आप देख रहे हैं, तो आपके लेफ्ट में हनुमान जी का विग्रह है जिसका नाम है मुख्य प्राण, और आपके राइट में गरुड़ जी का विग्रह है, उसको भी आपको देखना है। तो मुख्य प्राण को मध्वाचार्य लेकर आए थे, हनुमान जी स्वयं। फिर मंदिर के बाहर जाएंगे आप। अभी मंदिर का ऐसे विशेषता है कि आज शुक्रवार है, आज के दिन उडुपी कृष्ण जो है वो देवी का रूप धारण करते हैं। शुक्रवार के दिन वो एज ए सरस्वती बनते हैं, लक्ष्मी बनते हैं, या काली बनते हैं, या चंडी बनते हैं, या शारदा बनते हैं, और कोई भी बनते हैं, लेकिन देवी बनते हैं जरूर। उनको साड़ी वाड़ी पहनाते हैं, बिल्कुल बढ़िया से नथ पहनाते हैं, नववारी शालू साउथ इंडियन पहनाते हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। और रविवार के दिन वो वज्र पहनते हैं, वज्र कवच, यानी कि उनका पूरा ड्रेस जो है ना हीरों से बना हुआ है। पहले उनका वज्र मुकुट बना 2 साल में, फिर अगले सेवा जब आई किसी की तो उन्होंने वज्र कवच बनाया, और हर संडे को वज्र कवच धारण करते हो। संडे को दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है? 30 तारीख को आप लोग गोकर्ण से जब भी लौट कर आएंगे, हो सकता है आपको रात को 8 बजे भगवान के वज्र कवच का दर्शन होगा। हरे कृष्णा। फिर ये मंदिर के गर्भगृह से आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक हनुमान जी की मुख्य मूर्ति है, भोजनशाला के पास में, प्रवेश द्वार के पास लेफ्ट में है, वो भी जरूर देखना आप। उसके आगे जाएंगे तो सुब्रमण्यम गुड़ी है वहाँ पर। सुब्रमण्यम मतलब हमारे गांव में हर जगह पर नाग का स्थान है। जैसे बलराम को स्थापन किया गया ना, तो जगह जगह बलराम का स्थान बनाया गया सुब्रमण्यम गुड़ी के नाम से, क्योंकि वो अनंत शेष का रूप है। तो नाग के रूप में उनको जगह जगह पर सुरक्षा के लिए स्थापन किया गया। तो मंदिर के अंदर भी एक सुब्रमण्य गुड़ी है, लेकिन उसकी बहुत अद्भुत कथा ये है कि वाड़ीराज स्वामी नाम के स्वामी हुए। पहले मैं आपको पूरा अंदर की जरा सब बता देता हूँ, अंदर क्या क्या है। ओके, उसके आगे एक वृंदावन है, वृंदावन यानी कि जितने भी महाजन उड़पी में प्रकट हुए हैं संत जन, उनका सबका समाधि उधर है, तो वो उसको वृंदावन कहते हैं। उसके आगे गौशाला है, उसके आगे हाथीशाला भी है, तो आप सबका दर्शन कर सकते हैं। उसके आगे एक बाहर जाएंगे तो एक कट्टी के रथ नाम का जगह है। एक कट्टी के रथ का मतलब क्या है? कट्टी के मतलब लकड़ी। सो लकड़ी साल भर में जो यूज़ करते हैं ना भगवान के भोग लगाने के लिए, केवल लकड़ी में खाना बनता है। जहाँ भगवान का किचन है, तो भगवान के बिल्कुल किचन के बाहर ओपन जगह पर एक लकड़ी के बड़े बड़े डंडियों से, शाखाओं से बना हुआ एक रथ है। ऊपर पूरा रथ के शेप में बनाया गया पूरा, और वहीं से लकड़ी निकाल निकाल कर रोज उसको जलाते हैं। तो साल भर में वो पर्याप्त हो जाता है, जब समझ पता है तो दोबारा उसका रथ बना देते हैं। और साल भर फिर रथ को पूजा वूजा करके उस लकड़ियों से ही भगवान का भोजन बनाते हैं। मध्व सरोवर आप देखेंगे ना, मंदिर के बाहर है तो मध्व सरोवर का किनारा खत्म हो जाएगा, तो उसके एंड में ये कट्टी के रथ है। तो ये सब स्थान आपको देखना है। और अभी मैं आपको कहानी बताऊंगा उन महाराज की, जिनका वहाँ पर सुब्रमण्य गुड़ी के आसपास उनका डायरामा बना हुआ है। तो तात्पर्य यह है कि मंदिर में कभी संकट न आए, इसलिए बहुत सारा धन वाड़ीराज गोस्वामी ने जमीन के अंदर मंदिर के अंदर गाड़ के रखा हुआ है, और उसके ऊपर सुब्रमण्य गुड़ी को स्थापन किया है नाग को रक्षा करने के लिए। जब कभी आगे जाकर उड़पी मंदिर में भोजन के लिए समस्या होगी, प्रसाद बांटने में समस्या होगी, तो उनका आदेश है कि वो सुब्रमण्यम गुड़ी को वहाँ से निकालकर अंदर का रखा हुआ धन जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मध्वाचार्य की कृपा से आज तक वैसा समय नहीं आया है। पर्याप्त मात्रा में धन वहाँ पर आता है, और हर रोज़ वहाँ पर हजारों लोगों को भोजन किया जाता है। हफ्ते में एक दिन शनिवार के दिन साक्षात टाइल पर भोजन कराते हैं डायरेक्टली। इतना स्वच्छ है वो टाइल्स कि वहीं पर बिठाकर, वहीं पर जैसे आपको परोसा ना आज केले के पत्ते पर, वैसे ही वहाँ पर पूरा भोजन आपको परोसा जाता है। शनिवार के दिन सब लोग बिना पत्तल के ज़मीन पर ही भोजन करते हैं, इतना स्वच्छ वहाँ पर भोजनशाला है, आप उसका दर्शन भी कर सकते हैं। तो अभी वाड़ीराज नाम के महान संत जो मध्वाचार्य के पश्चात प्रकट हुए, उनके बारे में हम आपको कथा बताना चाहते हैं। ये वाड़ीराज जी थे, उनका जन्म जो है वो 1480 में हुआ। 1239 में मध्वाचार्य आए, उसके बाद 200 साल के पश्चात इनका जन्म हुआ। और जन्म की उनकी अद्भुत कहानी कैसी है, कि रामाचार्य और गौरी, ये उनके माता पिता का नाम है, और जो 8 मठ बनाए मध्वाचार्य ने, उसमें एक मठ है सौदे मठ, उस सौदे मठ के वो भक्त थे उनके माता पिता। तो उस समय उस मठ के वागीश तीर्थ नाम के आचार्य थे। तो वागीश तीर्थ नाम के आचार्य के पास वो गए और उन्होंने कहा कि हमको पुत्र नहीं हो रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए। तो वागीश तीर्थ बड़े त्रिकालदर्शी थे, उनको सब कुछ भूत भविष्य का ज्ञान था, तो उनको पता था कि इनके गर्भ से बहुत ही दिव्य व्यक्ति जन्म लेने वाली है। जैसे उनके पास पुत्र प्राप्ति के लिए गए तो वागीश तीर्थ जी महाराज ने उनको कहा कि आपको जो पुत्र होगा वो आपको आश्रम को दान करना पड़ेगा। वो जानते थे कि महान व्यक्ति विभूति इनके घर में जन्म लेने वाले हैं, लेकिन वो उनके लिए तैयार नहीं थे, उनको तो खुद के लिए पुत्र चाहिए था। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि हम आपको पुत्र का आशीर्वाद देंगे एक शर्त पर, अगर आपके पुत्र का जन्म घर के अंदर हुआ तो आपका, आप अपने घर पर रखिए उसको, लेकिन यथा कदाचित अगर उस पुत्र का जन्म घर के बाहर हुआ तो आपको उस पुत्र को आश्रम को दान देना है। इस शर्त पर उन्होंने राजी हो गए वो, और जैसे ही उनकी कृपा से, वागीश तीर्थ की कृपा से, दिव्य रूप से, वो भी बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उनको भी दिव्य तरीके से गर्भवती हो गई उनकी पत्नी गौरी देवी। तो गौरी देवी को पूरी गर्भावस्था में रामाचार्य ने अपने घर पे रखा, बाहर भेजा ही नहीं, पता नहीं प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए, कुछ हो जाए, फिसल जाए, क्या मालूम, और वैसे भी अगर हो जाए तो फिर देना पड़ेगा। तो पूरी प्रेगनेंसी में अपने पत्नी को घर पे रखा उन्होंने, किसी भी कारण से घर से बाहर नहीं भेजा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने पति को भोजन करा रही थी, और प्रेगनेंसी के पूरे महीने भी पूरे नहीं हुए थे, अभी तो टाइम था बहुत, और वहां पर उनके खेत में एक गाय आकर खेत को खा रही थी। तो ये भोजन कर रहे थे, तो ब्राह्मण लोग जैसे भोजन करते हैं कभी भोजन के बीच में उठते नहीं है, भोजन पूरा करके ही उठते हैं। तो भोजन कर रहे थे, वो परोस रही थी, तो वो अभी भोजन कर रहे थे, वो देख रहे हैं कि खेत को गाय खा रही है, तो कह रहे जाओ 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 वो गाय को पूरे हटाओ, वो हमारा खेत को नष्ट कर रही है। तो तुरंत वो बाहर गई, और उसका गर्भवती का समय पूरा ना होने पर भी अचानक उनकी डिलीवरी हो गई। तो ये बहुत आश्चर्य हो गया, समय भी नहीं था, कुछ वेदना भी नहीं थी, प्रसूति की वेदना नहीं, कुछ नहीं, अचानक उस पवित्र दिन पे उनको बाहर चली गई, वैसे बाहर कदम रखा, प्रसूति की वेदना हुई और बालक को जन्म दिया उन्होंने, जैसा वादा किया था वैसे आश्रम को दे दिया। तो फिर उनका नाम रखा गया भूवराह। उनका 5 साल में उपनयन हुआ और 8 साल में उनको संन्यास दिया गया। ऐसे महान विभूति थे, जन्म से ही विरक्त थे, 120 साल जिए, और उन्होंने 2 महीने का जो था ना पर्याय सिस्टम चेंज करने वाला, वो 2-2 साल में कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि 2 महीने में उनको कुछ सेवा शुरू करने के बाद तुरंत 2 महीने खत्म हो जाते हैं, अभी तो सेवा शुरू करके आनंद भी नहीं हो रहा उसका पूरा। तो उन्होंने ये पर्याय सिस्टम को क्या कहते हैं उसको, नया बनाया, और 2-2 साल का बना दिया। अभी 16 साल में हो गया, तो दो साल में एक मठ को सेवा मिलती है, तब वो अपने मठ के मठ का जो विग्रह है ना, जैसे श्री रामचंद्र का विग्रह है या भूराव विग्रह है या और कई विठल का विग्रह है, वो विग्रह को अपने मूल मंदिर में लेके आते हैं, उडुपी मंदिर में, वहाँ पर एक जगह है उसको कहते हैं मध्वपीठ। वहाँ पर वर्तमान आचार्य जो उडुपी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं वो वहाँ पर अपने आसन पर बैठते हैं और वहाँ से लोगों को आशीर्वाद देते हैं मंत्राक्षता के रूप में, और उसी जैसे यहाँ बैठते हैं तो ये खिड़की में इस तरह से उनका विग्रह रखते हैं, अपने विग्रह को लेकर आते हैं और 2 साल वहीं रखते हैं। उनके शिष्यगण उन विग्रह की सेवा करते हैं और मेन गुरु उडुपी कृष्ण की सेवा करते हैं 2 साल तक, और मकर संक्रांति के समय ये पर्याय जो है वो चेंज हो जाता है। बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत समारंभ पूर्वक पुराने जो पर्याय गुरु है वो नए पर्याय गुरु को चावी और थाली जो है वो सुपुर्द कर देते हैं। बहुत बड़ा उत्सव होता है, उडुपी में बहुत भीड़ होती है उस समय, जगह जगह पर मेले लगते हैं, बहुत बड़ा समारंभ होता है, और मंदिर के दूर थोड़ा सा हम वहाँ जा गए थे ना हम लोग अभी जनार्दन स्वामी को देखने के लिए आज सुबह, यरमाल कृष्ण, वहाँ कुछ सेरेमनी होते हैं उनके आदान प्रदान नदी किनारे, फिर वहाँ से वो जुलूस में लेकर चलकर उडुपी तक आते हैं, फिर आगे का समारोह होता है। तो ये वादिराज तीर्थ थे, इनका एक कहानी बताना बहुत जरूरी है। इतने महान थे, एक समय पर एक सोनार था ना, सोनार क्या कहते हैं उसको, गोल्ड स्मिथ, वो गणेश जी की मूर्ति बना रहा था, बड़ा बड़ा भक्त था गणेश जी का। और गणेश की मूर्ति बनाते बनाते अचानक उस मूर्ति का सर जो घोड़े का हो गया अपने आप ही, क्योंकि भगवान का एक अवतार है हयग्रीव, जिसका सर घोड़े का होता है। एक राक्षस था हयग्रीव नाम का, जिसका सर घोड़े का था, उसने भगवान से वरदान मांग लिया था कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता सिवाय जो मेरे जैसा है। और उनको पता था कि 84 लक्ष योनि में कोई भी ऐसी योनि नहीं है, ये देह मनुष्य का है और सर घोड़े का है। तो सोचा कि मैं अमर हो गया। तो भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया सत्ययुग में और उसका वध कर दिया। तो वह अवतार कैसा है, मनुष्य का शरीर है लेकिन घोड़े का सर है। तो हयग्रीव भगवान पर वादिराज का बहुत श्रद्धा थी, तो वादिराज के लिए वो मूर्तिकार के हाथ से अचानक हयग्रीव प्रकट हो गए। तो उस मूर्तिकार को बहुत आश्चर्य हो गया, तो उनको भगवान ने दर्शन दिया स्वप्न में। उन्होंने कहा ये मूर्ति आपको वादिराज को भेंट देनी है, मैं उनके लिए आपके घर में प्रकट हो गया हूँ। तो भगवान का आदेश मांगकर वो मूर्ति उन्होंने उनको प्रकट की। आज भी सौदे मठ का जहाँ मठ है, उस जगह पर जहाँ मठ था जब वादिराज जी थे, तो रोज वादिराज के सामने हयग्रीव भगवान प्रकट होकर उनके हाथ से भोजन करते थे। एवरी सिंगल डे जितने भी दिन सौदे मठ में वादिराज जी रहे, उतने सारे दिन वादिराज के हाथ से बनाया हुआ भोजन प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर घोड़े के मुख वाले हयग्रीव भगवान ने ग्रहण किया उसको। कभी कभी वो वादिराज जी जब भोजन लेकर चलते थे तो वो घोड़े के रूप में अवतार लेकर वो ऊपर से ऐसे खा लेते थे, सर पे रखे हुए भोजन को खा लेते थे। तो इस तरह से ये जो वादिराज आचार्य थे, उन्होंने कम से कम 350 किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े विद्वान थे वो। जब पंडरपुर गए तो विट्ठल भगवान प्रकट हो गए, उनको प्रकट होकर दर्शन दिया। जब तिरुपति गए तो बालाजी उनके सामने प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिया। और जब मूकाम्बिका यहाँ पर गए ना, कोल्लूर में गए, तो मूकाम्बिका देवी उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। इस तरह से और त्रिवेणी गए इलाहाबाद में, तो वेदव्यास जी ने उनको दर्शन दिया त्रिवेणी के संगम पर। ऐसे ये अद्भुत आचार्य हुए हैं, उनके वर्णन किए बिना हमारा उडुपी यात्रा पूर्ण नहीं हो सकता है। तो वो जो सुब्रमण्यम गुड़ी है उसके ऊपर एक डायरामा बना हुआ है, तो संक्षेप में आपको कथा बताता हूँ। वो हिमालय की ओर एक बार जा रहे थे, तो हिमालय की एक बार वहाँ पर एक मुसलमान राजा थे, तो वो मुसलमान राजा का पुत्र का देहांत हो गया। तो पुत्र का देहांत हो गया तो पुत्र को उन्होंने दफना दिया, और वहाँ पर वादिराज जी आए। वो सब राज्य में दुख शोक मनाया जा रहा था, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो हमारे राजा का पुत्र का देहांत हो गया, उसको अभी अभी दफना कर आ रहे हैं। तो ये वहीं जाकर बैठ गए और ध्यान लगाया उन्होंने हिमालय में बैठकर, तो उनको ये अनुभूति हुई कि पुत्र जिंदा है, मरा नहीं है। तो वो राजा के पास गए, उन्होंने कहा कि आपका पुत्र मरा नहीं है। तो इनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा क्या कहें उनको अभी, लेकिन साधु है। तो वो उनको उन्होंने कुछ दक्षिणा दिया, एक थैली भरकर सोने की मोहरे दी। तो वापस वो उधर जाकर बैठे जहाँ पर पहले उन्होंने भजन के ध्यान किया था, और सोनों के मोहरे वाली बैग है ना, वो गंगा नदी में छोड़ दिया उन्होंने ऐसी। राजा ने इस संत का पीछा किया सैनिकों के द्वारा, देखो क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं देखो जरा। तो देखते हैं कि ये तो सोने की मोहरे की थैली जो है वो नदी में छोड़ रहे हैं। सैनिक पूछे क्यों छोड़ रहे हैं, तो सोने के लोग मैं क्या करूँगा, मेरे पास भगवान का नाम है। तो जाकर उन्होंने खबर किया उनको कि इतने विरक्त है कि सोने की थैली समुद्र में नदी में छोड़ दिया। तो उनको दोबारा बुलाया और कहा कि आपको यकीन है कि मेरे पुत्र जिंदा है, तो जाके वो कब्र को खोद दो। जैसे कब्र खोदवा देते ना, उनका पुत्र जो है वो उठकर खड़ा हो जाता है और पिताजी को आके मिलता है। तो ये जो है ना, ये कहानी उनके ऊपर पूरा मंदिर सुब्रमण्यम गुड़ी के ऊपर पूरा ऐसे मूर्तियाँ बनाकर डायरामा बनाकर आपको एंड में दिखाई पड़ते हैं कि वो पुत्र जो है वो क्या कहते हैं उसको, कब्र से बाहर निकल के अपने पिता को मिल रहा है। और तब जाकर वादिराज को उस राजा ने बहुत संपत्ति दिया, बहुत संपत्ति दिया। अभी देखिए, एक झोली भर के संपत्ति दिया तो नदी में फेंक दिया, लेकिन जब बहुत संपत्ति दिया तो वादिराज के मन में ऐसा विचार आया कि भगवान मुझे इतनी संपत्ति क्यों दे रहे हैं। तो उनके मन में भगवान उडुपी कृष्ण ने दृष्टांत दिया कि ये सारी संपत्ति आकर तुम मेरे उडुपी कृष्ण के मंदिर के अंदर दफना देना, आगे जब संकट आएगा तब ये संपत्ति काम आएगी, तब तक उसको सुब्रमण्य गुड़ी के अंदर रख देना। तो वादिराज जी वो सारी संपत्ति हिमालय से लेकर उडुपी आए और मंदिर के अंदर उसको गाड़ दिया उन्होंने। अब सब भक्तों को आदेश दिया कि यहाँ पर मैं सांप को नाग को स्थापन कर रहा हूँ, आगे जाकर समस्या आएगी तो लिख के रखना ताकि लोग आगे की पीढ़ी के लोग पढ़ सकते हैं उसको। इस तरह से सोने की मोहर की थैली नदी में बहाने वाले संत ने सारी संपत्ति लाकर उडुपी कृष्ण के मंदिर में प्रदान कर दी। वादिराज गोस्वामी महाराज की। तो इन वादिराज महाराज जी का भी वृंदावन जो है उडुपी के मंदिर के अंदर ही है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।